आगे देखिए भाई, किताब पर मतन में देखिए भाई, असानी नौ वहुअल मकूलू अला कसीरीन मुत्तफिकीन बिल हकाइक़ फी जवाबी मा हुआ वक़द युकालु अलल माहियतिल मकूल अलैहा व अला गैरिहल जिन्स फी जवाबी मा हुआ व मुख्तस्सुम बिल इस्मिल इज़ाफी कल अव्वल बिल हकीकी व बैनहुमा उमूमुन व खुसूसुन मिन वजहिन लितसादुकिहिमा अलल इंसानी व तफारुकिहिमा फिल हयावानी व नुक्तति। गुज़श्ता सबक में शरा के अंदर एक एतराज का जवाब शारह ने जिक्र किया था। एतराज यह हुआ था कि आपने कुल्लियात को पांच किस्मों के अंदर बंद किया, हालांकि कुल्ली की पांच किस्में नहीं हैं, और भी किस्में हैं, जैसे कुल्लियात फर्जिया भाई, फर्जी कुल्लियात जो हैं, यानी ला शय, ला वजूद और ला मुमकिन वगैरह, तो ये तो इन पांच किस्मों में से किसी के अंदर भी दाखिल नहीं होती, ये उनसे खारिज हैं, तो फिर आपका कुल्लियात को पांच किस्मों में बंद करना दुरुस्त नहीं। तो शारह ने जवाब दिया था कि यहां कुल्लियात से वो कुल्लियात मुराद हैं जिनके नफ्सुल अमर में अफराद मौजूद हैं, चाहे खारिज में हैं चाहे जहन में, जबकि कुल्लियात फर्जिया उनका ना खारिज में कोई वजूद है और ना जहन में कोई वजूद है, और उनके साथ कोई गरज भी मुताल्लिक नहीं है, उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, लिहाजा उनको यहां जिक्र नहीं किया, उनका इरादा ही नहीं किया। तो वो कुल्लियात मुराद हैं जिनके नफ्सुल अमर में अफराद हैं, चाहे खारिज में हैं और चाहे जहन में हैं और चाहे दोनों में हैं भाई। फिर मैंने यहां तफसील बयान की थी कि वजूद की तीन किस्में हैं, एक वजूद खारिजी है, एक वजूद जहनी है और एक वजूद नफसुल अमरी है। वजूद खारिजी, जो खारिज में किसी चीज का वजूद होता है उसको वजूद खारिजी कहते हैं, जैसे ये किताब आपके सामने मौजूद है इसका खारिज में वजूद है, जैसे आप में से हर एक का खारिज में वजूद है तो ये वजूद खारिजी है, जो जो चीजें आपको नजर आती हैं इन सब का वजूद खारिजी है। और एक वजूद जहनी है, इन्हीं चीजों की जो सूरत हमारे जहन में हासिल होती है वो वजूद जहनी है। जैसे देखो, जैद आपके एक साथी का नाम है, मैंने जैसे ही जैद कहा आपके जहन में जैद की सूरत आ गई, ये है वजूद जहनी, ये है जैद का वजूद जहनी। तो जैद खारिज में भी मौजूद और जैद जहन में भी मौजूद, यूं कहें जैद के लिए वजूद खारिजी भी है और वजूद जहनी भी है। और वजूद नफ्सुल अमरी, नफ्सुल वजूद नफ्सुल अमरी, नफ्सुल अमर का मैंने माना बतलाया था कि नफ्स का माना है जात, जात, और अमर का माना है हाल और शय, हाल और शय। तो नफ्सुल अमर का माना हुआ शय अपनी जात के एतबार से, तो नफ्सुल अमर में चीजों के मौजूद होने का माना यह है कि वो वाकए में मौजूद हों। मैंने बताया था एक है नफ्सुल अमर और एक है वाकया और एक है खारिज, खारिज और चीज है, नफ्सुल अमर और वाकया ये मुतरादिफ हैं। जब कहा जाए कि ये चीज नफ्सुल अमर में मौजूद है तो माना यह है कि ये वाकये में क्या है, मौजूद है, जबकि खारिज और चीज है भाई, खारिज और चीज है। तो वजूद नफ्सुल अमरी किसको कहते हैं कि वाकये में एक चीज का वजूद हो। फिर ये नफ्सुल अमर शामिल है खारिज को भी और जहन को भी। खारिज में एक चीज का वजूद है तो हम कहेंगे नफ्सुल अमर में इसका वजूद है, जैसे जैद का खारिज में वजूद है तो नफ्सुल अमर में भी जैद का वजूद, यानी यूं कहें वाकये में जैद का वजूद है, या इसी तरह जहन में एक चीज का वजूद है तो हम कहेंगे नफ्सुल अमर में इसका वजूद है। लेकिन नफ्सुल अमर में जो चीज हो उसका खारिज में होना जरूरी नहीं। इसी तरह जो भी नफ्सुल अमर हो या जो भी वजूद जहनी हो, ये दोनों मुतरादिफ नहीं है। जो नफ्सुल अमर में हो उसका जहन में होना या जो जहन में हो उसका नफ्सुल अमर में होना जरूरी नहीं। मैंने निस्बतें बयान की थी भाई, वजूद खारिजी और वजूद जहनी के दरमियान उमूम और खसूस मिन वजह की निस्बत है। तवज्जो है, वजूद खारिजी और वजूद जहनी के दरमियान उमूम और खसूस मिन वजह की निस्बत है। उमूम और खसूस मिन वजह किसे कहते हैं? दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसी चीजें कि अकल उनके इकट्ठा होने को भी जायज समझे और अलग अलग होने को भी जायज समझे, तो इसको कहते हैं उमूम और खसूस मिन वजह। तवज्जो है, उमूम खसूस में इन वजह की तारीफ आपने क्या पढ़ी थी कि पहली कुल्ली दूसरी कुल्ली के बाद अफराद पर सादिक आए, बास पर सादिक न आए, और दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के बाद अफराद पर सादिक आए और बास पर सादिक न आए। और आसान लफ्जों में इसको समझ लें कि उमूम खसूस में इन वजह यह है कि दो चीजें हैं, अकल उनके इज्तिमा को भी जायज समझे और अकल उनके अलग अलग होने को भी जायज समझे। अकल उनके इज्तिमा को जायज समझे, मसलन देखो सफेद और हैवान, सफेद और हैवान, अकल इन दोनों के जमा होने को भी जायज समझती है कि एक ही चीज सफेद भी हो और हैवान भी हो, और अकल इन दोनों के अलग अलग होने को भी जायज समझती है कि एक चीज सफेद तो हो लेकिन हैवान ना हो, या एक चीज हैवान तो हो लेकिन सफेद ना हो। तो उमूम खसूस मुतलक किसे कहते हैं कि दो चीजों का इस तौर पर होना कि अकल उनके जमा होने को भी जायज समझे और उनके अलग अलग होने को भी जायज समझे, तो इसको उमूम खसूस मिन वजह की निस्बत कहते हैं। तो मैं बयान कर रहा था वजूद जहनी और वजूद खारिजी को। वजूद जहनी और वजूद खारिजी में उमूम खसूस मिन वजह की निस्बत है, यानी अकल इनके इज्तिमा को भी जायज समझती है और इनके अलग अलग होने को भी जायज समझती है। बात समझ में आ गई। तो इनमें उमूम खसूस में इन वजह की निस्बत है, दोनों हो, वजूद जहनी भी हो और वजूद खारिजी भी हो, जैसे जैद, अमर, बकर वगैरह, खारिज में भी इनका वजूद और जहन में भी इनकी, जहन में भी इनका वजूद है और इनकी सूरत है। और कभी सिर्फ वजूद खारिजी तो होगा लेकिन वजूद जहनी नहीं होगा, जैसे अल्लाह ताला की जात, वाजिबुल वजूद की जात। वाजिबुल वजूद तो कुल्ली है, हर वो चीज जिसका होना जरूरी हो, जो खुद ब खुद हो और अपने वजूद में किसी की मोहताज ना हो, उसको वाजिबुल वजूद कहेंगे। लेकिन खारिज में वाजिबुल वजूद का एक ही फर्द मौजूद है और अफराद का होना मुमकिन ही नहीं है, और वो अल्लाह ताला की जात है। तो अल्लाह ताला के लिए वजूद खारिजी तो है लेकिन वजूद जहनी नहीं है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला को हमने देखा ही नहीं है भाई, ये आंखें अल्लाह ताला को देखने की कुव्वत ही नहीं रखती। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ला तुद्रिकुहुल अबसार वहु युद्रिकुल अबसार, ये आंखें अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, अल्लाह को देख नहीं सकती, क्योंकि ये आंखें फानी हैं, फना होने वाली हैं। तो अल्लाह की जात को हमने देखा नहीं हुआ और हमें अल्लाह की जात की हकीकत का भी पता नहीं है, लिहाजा अल्लाह की जात के लिए वजूद खारिजी तो है लेकिन वजूद जहनी नहीं है, क्योंकि ना हमने अल्लाह की जात को देखा है और ना हमें अल्लाह की जात की हकीकत का पता है। किसी चीज को देखा हो या उसकी हकीकत का पता हो तभी जहन में आप क्या कर सकते हैं, उसका तसव्वुर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अल्लाह ताला की जात के लिए वजूद खारिजी तो है लेकिन वजूद जहनी नहीं, क्योंकि हम अल्लाह की जात की हकीकत से वाकिफ नहीं। हां हम अलामतों के जरिए और दलाइल के जरिए अल्लाह की जात को पहचानते हैं। यह हसीन और जमील निजाम जो चल रहा है कायनात का, खुद ब खुद नहीं हो सकता, यकीनन इसको कोई बनाने वाली और कोई चलाने वाली जात मौजूद है। तो हर वजूद खारिजी के लिए वजूद जहनी जरूरी नहीं, इसी तरह हर वजूद जहनी के लिए भी वजूद खारिजी का होना जरूरी नहीं। मसलन आप जहन में कोई ऐसी चीज फर्ज कर लेते हैं जिसका खारिज में वजूद ही नहीं, मसलन आपने दो सरों वाला इंसान फर्ज कर लिया, अब इसके लिए वजूद जहनी तो है लेकिन खारिज में ऐसा कोई इंसान मौजूद नहीं है, या आपने सोने का पहाड़ फर्ज कर लिया या आपने हीरे का पहाड़ फर्ज कर लिया, तो इनका वजूद जहनी तो है लेकिन वजूद खारिजी नहीं है। तो वजूद जहनी और वजूद खारिजी में कौन सी निस्बत, उमूम खसूस मिन वजह, जबकि वजूद नफ्सुल अमरी और वजूद खारिजी के दरमियान उमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। हर वजूद खारिजी वजूद नफ्सुल अमरी है लेकिन हर वजूद नफ्सुल अमरी वजूद खारिजी नहीं है। तो इनमें उमूम खसूस मुतलक की निस्बत है। उमूम खसूस मुतलक किसे कहते हैं कि एक कुल्ली तो दूसरी कुल्ली के हर फर्द पर सादिक आए लेकिन दूसरी कुल्ली पहली कुल्ली के हर फर्द पर सादिक ना आए। तो जो भी वजूद खारिजी होगा वो वजूद नफ्सुल अमरी जरूर होगा, वो जो भी खारिज में मौजूद है नफ्सुल अमर में और वाकई में वो मौजूद है, लेकिन जो भी नफ्सुल अमर में मौजूद हो उसका खारिज में मौजूद होना जरूरी नहीं। जो भी खारिज में मौजूद है नफ्सुल अमर में भी मौजूद है, जैसे जैद, अमर, बकर वगैरह, जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये खारिज में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे ये नफ्सुल अमर में भी मौजूद हैं, ये यूं कहेंगे कि ये वाकई में भी मौजूद हैं। लेकिन जो भी चीज नफ्सुल अमर में हो उसका खारिज में होना जरूरी नहीं। जैसे देखो सच और झूठ, सच एक चीज है, सब जानते हैं, सब उसको मानते हैं, वाकई में सच एक चीज है और वाकई में झूठ एक चीज, सच अलग चीज है और झूठ अलग चीज है। तो सच अलग चीज है और झूठ अलग चीज है, लेकिन क्या आपने सच और झूठ को देखा है?
नहीं।
किस तरह के वो होते हैं, किस तरह की उनकी शक्ल होती है? नहीं। वाकई में तो सच और झूठ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन खारिज में इनका कोई वजूद नहीं, क्योंकि सच ये मुताबकत का नाम है। आपका कौल वाकई के मुताबिक हो तो कहते हैं कि ये सच है। मसलन जैद खड़ा है और आप कहते हैं जैद खड़ा है, तो आपका ये कौल वाकई के मुताबिक है क्योंकि वाकई में भी जैद खड़ा है। और अगर आपका कौल वाकई के मुताबिक नहीं तो इसका क्या नाम है? झूठ है। तो सच वो तो सिर्फ मुताबकत का नाम है और झूठ किसका नाम है? आदम मुताबकत का नाम है। तो खारिज में इनका कोई वजूद नहीं है। बात समझ में आ रही है? या जैसे जैसे सूरज का निकलना और दिन का होना, इन दोनों में मुलाजमत है, लुजूम है। क्या है? सूरज निकलेगा तो दिन होगा, और जब दिन है तो मालूम हुआ क्या निकला हुआ है? सूरज है। तो दिन के होने, दिन के साथ सूरज का होना और सूरज के साथ दिन का होना लाजिम है, तो इनमें मुलाजमत है। देखो मुलाजमत बाबे मुफाला मैं बोल रहा हूं, बाबे मुफाला, बाबे मुफाला जानिबैन से लुजूम को चाहता है। एक चीज दूसरी के साथ लाजिम है तो दूसरी पहली के साथ लाजिम है, तो यह जानिबैन से फेल को चाहता है। तो दिन के होने के साथ सूरज का होना लाजिम और सूरज के साथ दिन का होना लाजिम है, तो इन दोनों में मुलाजमत है। और ये वाकई में है, किस में है? वाकई में है, लेकिन खारिज में इसका कोई वजूद नहीं क्योंकि ये मस्तर है, मुलाजमत लाजिम होना। और मैंने आपको बतलाया था कि मस्तर का खारिज में कोई वजूद नहीं। मस्तर एक सिफत है, एक माना है जो गैर के साथ कायम होता है। मसलन मैं कहता हूं जाराबा जैद, उन जैद ने पिटाई की, तो देखो यह जर्ब जैद की सिफत है। यह जर्ब किसी की सिफत होती है, जाराबा जैद उन, मालूम हुआ यह जर्ब किसकी सिफत है? जैद की। शरीबा आमर उन, अमर ने पिया, मालूम हुआ शुर्ब किसकी सिफत है? अमर की सिफत है। या इसी तरह काला बकरुन, ये कौल किसकी सिफत है? बकर की सिफत। तो ये जो मस्दर होता है ये किसी की सिफत होती है। मस्दर एक माना का नाम है, खारिज में इसका अपना अलग कोई वजूद नहीं। जैसे भागना या दौड़ना, भागना और दौड़ना ये क्या है? मस्दर। खारिज में इसका कोई वजूद नहीं। आप कहेंगे कि खारिज में तो हमें भागना नजर आता है, साथी दौड़ रहे होते हैं, तो मैंने बतलाया था कि जो खारिज में आपको नजर आता है यह हासिल बिल मस्तर है, यह मस्तर नहीं। मस्तर की वजह से जो हालत और जो कैफियत हासिल हुई उसको कहते हैं हासिल बिल मस्तर। मसलन दौड़ने से जो हालत हासिल हुई, जो हैअत हासिल हुई, उसको हासिल बिल मस्तर कहेंगे, और वो है दौड़। वो क्या है? दौड़। तो खारिज में आपको दौड़ नजर आ रही है, दौड़ना नजर नहीं आ रहा। इसी तरह हंसना, हंसना ये मस्तर है, इसका खारिज में कोई वजूद नहीं है। खारिज में आपको हंसना नजर नहीं आता। हां, इस हंसने से जो हालत हासिल होती है यानी हंसी, वो आपको नजर आती है। तो खारिज में आपको हंसी नजर आती है, हंसना नजर नहीं आता। तो लिहाजा सूरज के निकलने के साथ दिन का होना और दिन के साथ सूरज का होना, इनमें मुलाजमत है। और मुलाजमत क्या है? मस्तर है, और मस्तर का खारिज में वजूद नहीं। तो वाकई के अंदर तो इनमें मुलाजमत है, लेकिन इसका कोई खारिजी वजूद नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जो भी वजूद खारिजी होगा वो वजूद नफ्सुल अमरी होगा और वजूद वाकई होगा, लेकिन जो भी वजूद वाकई हो उसके लिए वजूद खारिजी जरूरी नहीं। जैसे सच और झूठ, भाई इनके लिए वजूद वाकई तो है लेकिन वजूद खारिजी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि देखो सच अच्छी चीज है और झूठ बुरी चीज है। तो सच का अच्छा होना और झूठ का बुरा होना, यह भी देखो एक वाकई चीज है, लेकिन खारिज में इसका कोई वजूद नहीं है। तो नफ्सुल अमर और खारिज में कौन सी निस्बत हुई? उमूम व खुसूस मुतलक की। जबकि वजूद नफ्सुल अमरी और वजूद जहनी में उमूम व खुसूस मिन वजह की निस्बत है। उमूम व खुसूस मिन वजह, उमूम व खुसूस मिन वजह किसे कहते हैं? कि अकल दोनों के इज्तिमा को भी जायज समझे और दोनों में से हर एक के अलग होने को भी जायज समझे। इज्तिमा की सूरत, मसलन सच का अच्छा होना आपके जहन में भी क्या है, सच क्या है, अच्छी चीज है, और वाकई में भी क्या है, सच अच्छी चीज है, या सिर्फ सच ले लो, सच सच और झूठ, सच और चीज है और झूठ और चीज है। आपके जहन में भी सच का वजूद है लेकिन सच का खारिज में कोई वजूद नहीं, और आपके जहन में भी क्या है, झूठ का वजूद है लेकिन खारिज में झूठ का वजूद नहीं। क्यों? क्योंकि सच तो किस चीज का नाम है, मुताबकत का नाम है। आपका कौल वाकई के मुताबिक है तो ये सच, और अगर आपका कौल वाकई के मुताबिक नहीं तो ये झूठ है, तो ये मुताबकत का नाम है, और मुताबकत वो तो मस्दर है, और मस्दर का तो कोई खारिज में वजूद नहीं होता। एक चीज का वजूद नफ्सुल अमर में तो वजूद हो लेकिन जहन में ना हो, जैसे अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की जात नफ्सुल अमर में वाकई में मौजूद है लेकिन जहन में मौजूद नहीं, क्योंकि हमें अल्लाह की जात की हकीकत का पता ही नहीं। और वजूद जहनी हो और वजूद नफ्सुल अमरी ना हो, जैसे कोई भी फर्जी चीज आप तसव्वुर कर लेते हैं, जैसे आपने दो सरों वाला इंसान फर्ज किया, अब इसके लिए वजूद जहनी तो है लेकिन वजूद नफ्सुल अमरी नहीं है। तो नफ्सुल अमर में होने का माना यह है कि वो किसी फर्ज फारिज पर मौकूफ ना हो, कि फर्ज करने वाला फर्ज करे तो वो है, फर्ज करने वाला फर्ज न करे तो उसका वजूद न हो। तो जो चीज वाकई में है वो फर्ज फारिज पर मौकूफ नहीं, कोई उसका एतबार करे तो है और कोई एतबार न करे तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि ये जो वजूद खारिजी होता है इसको वजूद आइनी और वजूद असली कहते हैं, कि असली वजूद है एक चीज का, और वजूद आइनी यानी एक चीज की जात का वजूद है, और वजूद जहनी को जिल्ली और मिसाली वजूद कहते हैं। ये जो खारिज में चीज है उसका जिल है, उसका अक्स है और उसके उसके मिसल है, तो ये मिसाली वजूद है। उसके बाद फिर इन्होंने आपको कुल्लियात खमसा की वजह हसर बयान की थी कि कुल्लियात कितनी हैं, पांच हैं, क्योंकि कुल्ली अपने अफराद की या तो आयन हकीकत होगी या हकीकत का जुज होगी या हकीकत से खारिज होगी। अगर आयन हकीकत हो तो वह नौ है, अगर जुज हकीकत है तो फिर या तो वह तमाम मुश्तरक होगी उस माहियत के दरमियान और दूसरी माहियतों के दरमियान और वह जिन्स है, और अगर ऐसा ना हो तो वह फसल है। और अगर कुल्ली अपने अफराद की हकीकत से खारिज हो तो फिर वह एक ही हकीकत वाले अफराद पर बोली जाएगी या मुख्तलिफ हकीकत हकीकतों वाले अफराद पर, अगर एक ही हकीकत वाले अफराद पर बोली जाए तो वो खासा है, और अगर मुख्तलिफ हकीकतों वाले अफराद पर बोली जाए तो वो आरज आम है, और इसी खासा को आरज खास भी कहते हैं। आरज का माने सिफत, सिफत। तो यहां तमाम मुश्तरक का लफ्ज आया था, इन्होंने क्या कहा, जींस जो है वह तमाम मुश्तरक होगा मुख्तलिफ माहियतों के दरमियान। जींस क्या होगी, तमाम मुश्तरक होगी मुख्तलिफ माहियतों के दरमियान, जैसे इंसान है, बकर है, फरस है, हिमार है, इनमें तमाम मुश्तरक क्या है, हैवान भाई, इनमें तमाम मुश्तरक क्या है, हैवान। इसके अंदर वो सारी चीजें आ गई जिन जिन में ये मुश्तरक हैं, जैसे जौहर भी इसमें आ गया, क्योंकि क्योंकि हैवान किसे कहते हैं, जिस्म उन नाम इन हसास उन मुतहरिक उन बिल इरादा, तो जो जिस्म है वो जौहर होगा, क्योंकि जिस्म किसके तहत है, जौहर के तहत, तो जौहर होने के एतबार से भी इंसान और ये हैवानात ये शरीक हैं, इन ये क्या हैं, शरीक हैं, ये जौहर हैं ये सब, और नीज ये सब क्या हैं, जिस्म हैं, और फिर जिस्म भी कौन से हैं, जिसमें नामी, और फिर ये हसास हैं, और ये क्या है, मुतहरिक बिल इरादा। तो जब हैवान का लफ्ज बोला तो ये सारी चीजें आ गई, क्योंकि हैवान किसे कहते हैं, जिस्म उन नाम इन हसास उन मुतहरिक बिल इरादा, तो ये जिसमें नामी होता है, जब जिसमें नामी है तो जिसम भी है, और जब जिसम है तो जौहर भी है, क्योंकि जिसम किसके अफराद में से, जौहर के अफराद में से, तो हैवान जिसमें नामी भी है, हसास भी है और मुतहरिक बिल इरादा, तो वो जुज जो वो तमाम मुश्तरक हो माहियतों के दरमियान उसको जिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये हैवान, इन हैवानात के अंदर जो तमाम मुश्तरक है वो हैवान है, और उसमें कई चीजें आ गई, उसमें जिसमें नामी भी आ गया, उसमें हसास भी आ गया, और उसमें मुतहरिक बिल इरादा भी आ गया। तो जिन्स जो होती है वो सिर्फ मुश्तरक जुज को नहीं कहते बल्कि तमाम मुश्तरक जुज को कहते हैं, किसको, जो केस में वो सारी चीजें आ जाए जिसमें ये शरीक हैं आपस में। तो हैवान किसे कहते हैं, جسم نام حساس متحرک بل ارادہ, کہ اس کا جسم نامی ہو اور حساس ہو. ہر حیوان کیا ہے؟ حساس. حساس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے, یعنی وہ حس رکھتا ہے. کیا رکھتا ہے؟ حس رکھتا ہے. دیکھو انسان کو اللہ نے حواس دیے ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اس کو اللہ نے حواس خمسہ ظاہرہ نصیب فرمائے ہیں, اس کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت نصیب فرمائی ہے, قوت باصرہ, اور یہ قوت اللہ نے آنکھوں میں رکھی ہے. اس کے ذریعے انسان چیزوں کو دیکھتا ہے. اور ایک سننے کی طاقت اللہ نے انسان کو نصیب فرمائی ہے اور اسے قوت سامعہ کہتے ہیں, اور یہ طاقت اللہ نے کانوں میں رکھی ہے. اور ایک اللہ نے قوت شامہ انسان کو نصیب فرمائی ہے, شامہ یعنی سونگنے کی قوت, اور یہ قوت اللہ نے ناک میں رکھی ہے. اسی طرح انسان کو اللہ نے چکھنے کی قوت نصیب فرمائی ہے, اور یہ اس کا نام قوت ذائقہ ہے, اور یہ اللہ نے زبان میں رکھی ہے. اور ایک قوت اللہ نے انسان کو لمس کی نصیب فرمائی ہے, جسے قوت لامسہ کہتے ہیں, اور یہ قوت پورے بدن میں تقریباً پھیلی ہوئی ہے, اور اس کے ذریعے انسان جو ہے چیزوں کو چھو کر ان کا پتہ لگاتا ہے کہ کوئی چیز نرم ہے یا سخت ہے, خشک ہے یا تر ہے, ہموار ہے یا کھردری ہے وغیرہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں, دیکھو یہ حواس اللہ نے کس کو نصیب فرمائے؟ انسان کو. اسی طرح تمام حیوانات جو ہیں وہ حس والے ہیں, وہ مختلف چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, مختلف قسم کے حواس اللہ نے ان کو نصیب فرمائے ہیں جس کے ذریعے وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں. تو حساس کا کیا معنی؟ جو چیزوں کو محسوس کرتے ہیں, جو حس رکھتے ہیں, حواس رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اس کے بعد کل کے سبق میں ما ہوا کا بھی بیان آیا تھا. میں نے بتلایا تھا ایک ہے ما ہوا اور ایک ہے ایو شیئن ہوا. ما ہوا کے ذریعے بھی منطقی سوال کرتے ہیں اور ایو شیئن ہوا کے ذریعے بھی منطقی سوال کرتے ہیں, لیکن ان کے ذریعے مخصوص قسم کے سوال ہوتے ہیں. ما ہوا کے ذریعے ہمیشہ حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے, اور ایو شیئن ہوا کے ذریعے ایسی چیز کا سوال کیا جاتا ہے جو ایک چیز کو دوسری چیزوں سے جدا کر دے. تو ما ہوا کے جواب میں جنس بھی آتی ہے, نوع بھی آتی ہے, اور حد تام بھی آتی ہے, جبکہ ایو شیئن ہوا کے جواب میں فصل اور خاصہ آتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے بھائی. الثانی النوع وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو. اب نوع کی تعریف کرنے لگے ہیں بھائی. نوع کہتے ہیں النوع وهو المقول على كثيرين, کہ نوع وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے, یعنی اس کا حمل کیا جاتا ہے, على كثيرين بہت سو پر, یعنی بہت سے افراد پر, متفقین بالحقائق ایسے افراد جو متفق ہوں حقائق کے اعتبار سے, یعنی سب کی حقیقت ایک ہی ہو. فی جواب ما ہوا, کس کے جواب میں؟ ما ہوا کے جواب میں. تو دیکھو نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں. توجہ ہے؟ نوع وہ کلی ہے جو کثیرین متفقین بالحقائق پر بولی جاتی ہے ما ہوا کے جواب میں, یعنی ایسے افراد پر جن کی حقیقتیں ایک ہی ہوتی ہیں. جیسے انسان, انسان وہ زید پر بھی بولا جاتا ہے, عمر, بکر, خالد وغیرہ جتنے انسان ہیں سب پر یہ انسان کا لفظ صادق آتا ہے, کیونکہ ان سب کی حقیقت ایک ہی ہے. سب حیوان ناطق ہیں. سب کیا ہیں؟ حیوان ناطق ہیں. اور یہ ما ہوا کے جواب میں آتی ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ما ہوا کے جواب میں کتنی چیزیں آتی ہیں, جنس, نوع اور حد تام. بھائی جنس, نوع اور حد تام. تو جنس کی تعریف میں بھی ما ہوا کو ذکر کیا تھا, اور نوع کی تعریف میں بھی ما ہوا کو ذکر کیا, کیونکہ یہ ما ہوا کے جواب میں آتی ہے بھائی. اور دیکھیے جب انہوں نے کہا النوع وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقائق, نوع وہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے بہت سے افراد پر جن کی حقیقتیں متفق ہوں, جن کی حقیقتیں ایک ہوں, ایک حقیقت والے. تو کون کون نکل گئے؟ جنس نکل گئی, کیونکہ وہ ایک حقیقت والے افراد پر نہیں بولی جاتی. اور عرض عام بھی نکل گئی, کیونکہ وہ بھی ایک حقیقت والے افراد پر نہیں بولی جاتی. ہاں, نوع بھی باقی ہے ابھی, اور فصل بھی, اور خاصہ بھی, کیونکہ یہ سب کیا ہیں؟ ایک ہی حقیقت والے افراد پر بولے جاتے ہیں. فصل کیا ہے؟ ناطق, नातिक सिर्फ इंसान पर बोला जाता है, सबकी हकीकत एक ही है, खासा जैसे जाहिक, तो जाहिक भी एक ही हकीकत वाले यानी इंसान पर बोला जाता है, तो नौ भी एक हकीकत वाले अफराद पर बोली जाती है, फसल भी एक हकीकत वाले अफराद पर और खासा भी। तो कहते हैं वह हुल मकूल आला कसीरीन मुत्तफिकीन बिल हकायक, वो कुल्ली है जो बोली जाती है बहुत से ऐसे अफराद पर जिनकी हकीकतें मुत्तफिक होती हैं। तो जिंस और आरज आम तो निकल गए, लेकिन अभी भी तीन चीजें इसके अंदर हैं, और तारीफ किसकी कर रहे हैं, नौ की। लिहाजा फसल और खासा को भी निकालना जरूरी है। तो आगे कह दिया फी जवाबी मा हुआ, किसके जवाब में, मा हुआ के जवाब में। अब खासा भी निकल गया और फसल भी, क्योंकि खासा और फसल वो अयुशैन हुआ के जवाब में आते हैं, मा हुआ के जवाब में नहीं आते। तारीफ समझ में आ गई। तो ये जामिया मानिया तारीफ है, ये कुल्लियात खमसा में से सिर्फ नौ पर सादिक आ रही है और किसी पर सादिक नहीं आ रही। फिर ये तारीफ आप देखें जरा कि जिंस और नौ की तारीफ बिल्कुल एक जैसी है, सिर्फ जिंस की तारीफ में था मुख्तलिफीन बिल हकायक और नौ की तारीफ में क्या है मुत्तफिकीन बिल हकायक। जिंस के अफराद उनकी हकीकतें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन नौ के जो अफराद होती हैं उनकी हकीकतें मुत्तफिक होती हैं, यानी एक ही हकीकत होती है। तो ये नौए हकीकी की तारीफ की, आगे एक नौए इजाफी की भी तारीफ करेंगे। नौए हकीकी की क्या तारीफ की, नौए हकीकी किसे कहते हैं, वो कुल्ली है जो एक हकीकत वाले अफराद पर बोली जाए मा हुआ के जवाब में। नौए हकीकी किसे कहते हैं, एक हकीकत वाले अफराद पर बोली जाए मा हुआ के जवाब में। आगे अब नौए इजाफी की तारीफ करने लगे हैं। याद रखिए नौए इजाफी इसे कहते हैं, ऐसी माहियत को नौए इजाफी कहते हैं कि जिसके साथ दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में जिंस आए। तवज्जो है, खूब अच्छी तरह समझ लें, एक माहियत के साथ दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए मा हुआ के जरिए तो जवाब में जिंस आए। मसलन इंसान है, इसके साथ मैं एक और माहियत को लेकर पूछता हूं, मसलन फरस, अल इंसान वल फरस माहुमा, तो जवाब में क्या आएगा, हैवान, देखो जिंस आ गई। ऐसी माहियत को नौए इजाफी कहते हैं कि जिसके साथ दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए तो जवाब में क्या आए, जिंस। इसको क्या कहते हैं, नौ, ये नौए इजाफी है। ये क्या है, एक नौए हकीकी है। अभी आपने तारीफ पढ़ी, नौए हकीकी किसे कहते हैं, जो एक हकीकत के अफराद पर बोली जाए किसके जवाब में, मा हुआ के जवाब में। और अरबी में तारीफ, वो आपको अरबी की तारीफ जुबानी याद होनी चाहिए, हुल मकूल अला कसीरीन मुत्तफिकीन बिल हकायकी फी जवाब मा हुआ। तो यह है नौए हकीकी और एक है नौए इजाफी। नौए इजाफी किसे कहते हैं, ऐसी माहियत को नौए इजाफी कहते हैं कि जिसके साथ किसी दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए तो जवाब में जिंस वाकई हो। मसलन इंसान, इसको मैं देखना चाहता हूं यह नौए इजाफी है या नहीं। नौए हकीकी तो यह है क्योंकि ऐसे अफराद पर बोली जाती है जिनकी हकीकतें एक हैं और किसके जवाब में आती है, मा हुआ के जवाब में। तो ये नौ तो है, अब मैं देखना चाहता हूं ये नौए इजाफी है या नहीं। तो मैंने इस इंसान के साथ एक और माहियत को मिलाया, मसलन फरस को मिलाया, अल इंसान वल फरस मा हुमा, तो जवाब में क्या आया, हैवान, देखो जिंस जवाब में आ गई। मालूम हुआ इंसान क्या है, नौए इजाफी है, नौए इजाफी है। दूसरी मिसाल ले लें, मैंने अल इंसान के साथ शजर को मिलाया, अल इंसान व शजर माहुमा, इंसान और शजर क्या चीज हैं, जवाब में क्या आया, जिसमें नामी और जिसमें नामी जिंस है कि नहीं है, वो भी जिंस है। आपने पढ़ा था एक जिंस से करीब है एक जिंस से बाहर, तो ये करीब तो नहीं इंसान के लिए लेकिन बाहर तो है, लेकिन है तो जिंस ही। तो मैंने इंसान के साथ शजर को मिलाया एक और माहियत को, तो जवाब में जिंस आई। मालूम हुआ इंसान क्या है, नौए इजाफी। मैं इंसान के साथ एक और चीज मिलाता हूं, अल इंसान वल हजर मा हुमा, इंसान और पत्थर क्या चीज है, जवाब में क्या आया, जिस्मोन, देखा जवाब में जिंस आ गई। बात समझ में आ रही है, हैवान भी जिंस, जिसमें नामी भी जिंस, जिसमें मुतलक भी जिंस, जौहर भी जिंस, भाई तरतीब समझ में आ रही है। तो वो माहियत उस माहियत को नौए इजाफी कहते हैं, तवज्जो है, उस माहियत को नौए इजाफी कहते हैं जिसके साथ एक और माहियत को मिलाकर माहुआ से सवाल किया जाए तो जवाब में क्या आए, जेंस आ जाए। और मिसाल ले लो, मैंने हैवान को लिया, हैवान नौ है या जिन्स है, जिन्स है, जिन्स को मैंने लिया। अब मैं देखना चाहता हूं यह नौए इजाफी है या नहीं, तो मैंने हैवान के साथ शजर को मिलाया, अल हैवान व शजर माहुमा, जवाब में क्या आया, जिस्मुन नामिन, ये क्या है, जिसमें नामी। तो देखो मालूम हुआ यह हैवान भी नौए इजाफी है, क्योंकि इसके साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में क्या आती है, जिन्स आती है, और हैवान खुद क्या है, जिन्स। तो देखा यह जिन्स नौए इजाफी हुई, जिन्स क्या हो गई, मालूम हुआ नौए इजाफी आम है, नौए हकीकी भी हो सकती है और जिन्स भी हो सकती है। तवज्जो है, नौए इजाफी आम है, वो नौए हकीकी भी हो सकती है और जिन्स भी हो सकती है। तो नौए इजाफी किसे कहते हैं, वो माहियत, ये माहियत का नाम है, वो माहियत कि जिसके साथ दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में क्या आए, जिन्स आए। इससे एक और बात का पता चल गया, नौए इजाफी के ऊपर हमेशा जिन्स होगी, जिस चीज के ऊपर जिन्स नहीं वो नौए इजाफी भी नहीं। तवज्जो है, जिस चीज के ऊपर जिन्स नहीं वो नौए इजाफी भी नहीं है। भाई नौए इजाफी के साथ आपने एक और माहियत को मिलाकर सवाल किया, ऊपर कोई जिन्स होगी तो जवाब में आएगी, ऊपर कोई जिन्स नहीं है तो जवाब में कहां से आए। तो नौए इजाफी हमेशा उसको कहेंगे जिसके ऊपर क्या हो, जिन्स हो, फिर वो नौए इजाफी नौए हकीकी भी हो सकती है और जिन्स भी। मसलन अल इंसान, ये क्या है, नौए हकीकी है। नौए हकीकी की क्या तारीफ पड़ी थी, कुलियन मकुलन आला कसीरीना मुत्तफिकीना बिल हकायकी फी जवाबी मा हुआ, तो ये नौए हकीकी भी है। अब नौए इजाफी है या नहीं, हमने इस इंसान के साथ एक और चीज को मिलाकर सवाल किया, मसलन बकर को या फरस को, जवाब में क्या आया, हैवान। मालूम है इंसान नौए हकीकी भी है और नौए इजाफी भी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, जिन्स मौजूद है, इसके साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में जिन्स आती है। और इसी तरह हैवान वो क्या है, वो नौए हकीकी तो नहीं, वो तो क्या है, जिन्स है, लेकिन नौए इजाफी है, क्योंकि इस हैवान के साथ किसी और चीज को मिलाकर सवाल करें, मसलन हैवान के साथ शजर को मिलाया तो जवाब में क्या आया, जिसमें नामी आया, तो हैवान क्या है, नौए इजाफी है। अच्छा, जिसमें नामी को ले लें, जिसमें नामी को ले लें, मैं देखना चाहता हूं ये जिसमें नामी, ये है तो जिन्स, ये है तो, लेकिन क्या नौए इजाफी है या नहीं, मैं देखना चाहता हूं। जिसमें नामी के साथ मैं एक और माहियत को मिलाकर सवाल करूंगा, अल जिस्मु नामी वल जबालो माहुमा, जिसमें नामी और पहाड़ क्या चीज है, आप जवाब में क्या कहेंगे, जिस्मुन, जिस्म। देखा, तो जिसमें नामी के साथ एक और माहियत को मिलाकर सवाल किया तो जवाब में क्या आई, जिन्स आ गई। मालूम हुआ ये जिसमें नामी भी क्या है, नौए इजाफी है। तो आसान लफ्जों में, वो माहियत जिसके ऊपर जिन्स मौजूद हो उसको क्या कहेंगे, नौए इजाफी। वो माहियत जिसके ऊपर क्या मौजूद हो, क्योंकि इस माहियत के साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में जिन्स का आना जरूरी है, और वो तभी आएगी जब इसके ऊपर क्या मौजूद हो, कोई जिन्स मौजूद हो। अगर ऊपर जिन्स ही नहीं है तो जवाब में जिन्स कहां से आ सकती है। तो हर नौए इजाफी के लिए जिन्स का होना जरूरी है, और नौए इजाफी दो चीजें हो सकती हैं, या वो नौए हकीकी होगी या वो जिन्स होगी। और नामों से भी आपको पता चल रहा है, नौए हकीकी वो हकीकत में नौ है, उसकी तारीफ क्या की थी, उसकी तारीफ ही अलग थी, हुआ कुल्लियुन मकूलुन आला कसीरीना मुत्तफिकीना बिल हकायकी फी जवाबी मा हुआ, ये हकीकत में नौ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नौए हकीकी। और जो नौए इजाफी है, इजाफत का क्या माना, निस्बत, ये दूसरों की निस्बत से नौ कहलाती है, ये हकीकत में इसका नौ होना जरूरी नहीं है। जैसे हैवान, हैवान इसके ऊपर कौन सी जिन्स है, जिसमें नामी, ये जिसमें नामी की निस्बत से ये नौ है, हकीकत में ये नौ नहीं है। इसी तरह जिसमें नामी, ये भी नौ है लेकिन ये नौ इजाफी है, यानी जिस्म की निस्बत से जिसमें नामी क्या है, नौ है लेकिन हकीकत में ये नौ नहीं। इसी तरह जिस्म के ऊपर जौहर है, तो जिस्म जौहर की निस्बत से नौए इजाफी है लेकिन यह नौए हकीकी नहीं है। तफसील समझ में आ गई। कहते हैं वक़द युकालु अलल माहियतिल मकूल अलैहा व अला गैरिहल जिन सूफी जवाब मा हुआ। यह इबारत अच्छी तरह समझ लें, यहां मुश्किल इबारत है। वक़द युकालु और कभी कभार कहा जाता है, हुआ जमीर नौ को राजे है। युकालु के अंदर नाई फाइल है, वो किसको राजे? नौ। और कभी नौ कही जाती है, नौ बोली जाती है, तवज्जो है। अब नौ इजाफी की तारीफ करने लगे। वक़द युकालु और कभी नौ बोली जाती है, अलल माहियती उस माहियत पर, तवज्जो है, उस माहियत पर, अल मकूली अलैहा व अला गैरिहा अल जिन्सु, कि उस पर और उसके गैर पर जिन्स बोला जाए, तवज्जो है
जी।
यूं करें, यह माहियत की जगह जरा इंसान का सोचना, इंसान ख्याल रखना। इस माहियत से क्या मुराद है? मसलन इंसान। और कभी कभार नौ कहा जाता है उस माहियत को, यानी के इंसान को, के अल मकूल अलैहा व अला गैरिहा अल जिन्सु, के उस पर और उसके गैर पर जिन्स बोला जाए, यानी इंसान और उसके गैर, कौन? फरस या कोई और चीज, उसको मिलाएं तो जवाब में जिन्स बोली जाए। फी जवाब मा हुआ, किसके जवाब में? यानी उस माहियत के साथ एक दूसरी माहियत को मिलाकर मा हुआ से सवाल करें तो जवाब में क्या आए? जिन्स आए। भाई तारीफ समझ में आ रही है? फिर लफ्ज देखें, वक़द युकालु और कभी नौ का लफ्ज़ बोला जाता है, अलल माहियती उस माहियत पर, कि अल मकूल अलैहा व अला गैरिहा, कि उस माहियत और उसके गैर पर बोला जाता है, अल जिन्सु किसको? उस पर और उसके गैर पर जिन्स बोला जाता है, फी जवाब मा हुआ, किसके जवाब में? उस माहियत के साथ एक और माहियत को मिलाकर आपने सवाल किया मा हुआ से, तो उस पर क्या बोला गया? जिन्स बोला गया। तो कहते हैं वक़द युकालु अलल माहियतिल मकूल अलैहा व अला गैरिहा जिन्स फी जवाब मा हुआ, और कभी बोला जाता है नौ का लफ्ज उस माहियत पर, कि उस पर और उसके गैर पर मा हुआ के जवाब में जिन्स बोला जाए। तर्जमा समझ में आ गया। वह मुख्तसम बिल इस्म इज़ाफी, और ये नौ, ये वाली जो नौ की दूसरी हमने तारीफ की, वह मुख्तसम बिल इस्म इज़ाफी, ये खास है इजाफी के नाम के साथ, ये खास है, यानी इसको नौ इजाफी कहते हैं, यानी ये ऊपर की तरफ निस्बत करते हुए नौ है, हकीकत में इसका नौ होना जरूरी नहीं। तो ये माना वह मुख्तसम बिल इस्म इज़ाफी, ये खास है इजाफी के इस्म के साथ, यानी इसको नौ इजाफी कहते हैं। कल अव्वली बिल हकीकी, जैसे पहली नौ जो थी वो हकीकी के नाम के साथ खास है, नौ की जो पहली तारीफ आई थी उसको क्या कहते हैं? नौए हकीकी कहते हैं। व बैनहुमा उमूमुन व खुसूसुन मिन वजहिन, और इन दोनों के दरमियान उमूम व खुसूस मिन वजह है, नौए हकीकी है और एक है नौए इजाफी, इन दोनों में उमूम व खुसूस मिन वजह की निस्बत है, इनमें उमूम खसूस मीन वजह की निस्बत है। उमूम खसूस मीन वजह किसे कहते थे? कि अकल उनके इज्तिमा को भी जायज समझे और दोनों के अलग अलग होने को भी जायज समझे। दोनों का इज्तिमा, जैसे इंसान है, जैसे इंसान नौए हकीकी भी है और नौए इजाफी भी। नौए हकीकी क्यों? क्योंकि कुल्ली उन मकुल उन आला कसीरीन मुत्तफिकीन बिल हकायक फी जवाबी मा हुआ, यह तारीफ इस पर सादिक आती है। नौ हकीकी भी है और नौ इजाफी भी है। क्यों? क्योंकि इंसान के साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में क्या आती है? जिन्स आती है। तो अकल इनके इज्तिमा को भी जायज समझती है और इफ्तिराक को भी जायज समझती है। इज्तिमा तो इंसान के अंदर आया, नौ हकीकी भी है और नौ इजाफी भी है, और दोनों के अलग अलग होने को भी अकल जायज समझती है कि नौए हकीकी हो और नौए इजाफी ना हो, या नौए इजाफी हो और नौए हकीकी ना हो, नौए इजाफी हो और नौए हकीकी ना हो। जैसे हैवान, हैवान क्या है? हैवान तो नौए हकीकी नहीं है, ये तो जिन्स है लेकिन नौए इजाफी है। क्या है? तो हैवान नौए इजाफी तो है लेकिन नौए हकीकी नहीं, और नौए हकीकी हो और नौए इजाफी ना हो। जैसे नुकता, नुक्ता, नुक्ता नौए हकीकी है लेकिन नौए इजाफी नहीं। यहां आप तफसील कुछ समझ लें भाई, तफसील। भाई इन्होंने क्या बताया आपको? नौए हकीकी और नौए इजाफी में कौन सी निस्बत है? उमूम खसूस में वजह की निस्बत है। ऐसा हो सकता है एक चीज नौए हकीकी हो और नौए इजाफी ना हो, यह भी हो सकता है एक चीज नौए इजाफी हो और नौए हकीकी ना हो, और यह भी हो सकता है एक चीज नौए हकीकी भी हो और नौए इजाफी भी हो, क्योंकि जहां उमूम खसूस में इन वजह की निस्बत होती है वहां तीन मादे होते हैं, एक इज्तिमा का और दो इफ्तिराक के। इफ्तिराक के दो मादे क्या कि एक कुल्ली तो पाई जा रही है दूसरी कुल्ली नहीं, और दूसरी सूरत दूसरी कुल्ली तो पाई जा रही है लेकिन पहली कुल्ली नहीं, और तीसरी सूरत यह है कि दोनों कुल्लियां इकट्ठी पाई जा रही हैं। तो इकट्ठी होने की सूरत क्या है? इंसान। और नौए इजाफी हो और नौए हकीकी ना हो जैसे हैवान, और नौए हकीकी हो और नौए इजाफी ना हो जैसे नुक्ता। नुक्ता यहां नुक्ते के बारे में तफसील अच्छी तरह समझ लें भाई, याद रखो ये आपको बतलाएंगे कि नुक्ता खत की तरफ को कहते हैं। तवज्जो है, नुक्ता खत की तरफ को कहते हैं, और खत जो है वो सतह की तरफ को कहते हैं, और सतह जो है वो जिस्म की तरफ को कहते हैं। भाई मेरे सामने ये एक डब्बा मौजूद है, फर्ज कर लो, फर्ज कर लो मेरे सामने ये एक डब्बा मौजूद है जो हर तरफ से बंद है। फर्ज कर लिया, ये डब्बा आपको नजर आ रहा है, ये आपने फर्ज कर लिया। देखो ये जो डब्बा है इसकी कुछ लंबाई है, कुछ इसकी चौड़ाई है और कुछ इसकी गहराई है। इसकी कुछ गहराई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ लंबाई है। तो मालूम हुआ ये जिस्म है। ये क्या है? जिस्म किसे कहते हैं? जिसकी कुछ लंबाई हो, चौड़ाई हो और गहराई हो। तवज्जो है। तो ये जो आपने डब्बा फर्ज किया जो हर तरफ से बंद है, इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, गहराई भी है। जब इसकी लंबाई है, मालूम हुआ आप लंबाई में इसके हिस्से बनाना चाहें, टुकड़े करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लंबाई में आप इसके हिस्से बना सकते हैं, और गहराई में भी इसकी गहराई भी है। मालूम हुआ उस तरफ से भी इसके अगर आप टुकड़े करना चाहें तो उसमें भी आप उसके टुकड़े और हिस्से कर सकते हैं, और इसकी चौड़ाई भी है तो चौड़ाई में भी आप उसके हिस्से कर सकते हैं। मालूम हुआ ये तीनों तरफ तकसीम को कबूल करता है। ये जो जिस्म है ये लंबाई, चौड़ाई, गहराई तीनों तरफ तकसीम को कबूल करता है। तवज्जो है। ये जिस्म जिसकी जिस्म किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई भी हो, गहराई भी हो और चौड़ाई भी हो, ये तीनों तरफ तकसीम को कबूल कर लेता है। यानी लंबाई में भी आप इसके हिस्से करना चाहें कर सकते हैं, आप चौड़ाई में इसके हिस्से करना चाहें कर सकते हैं, आप गहराई की तरफ इसके हिस्से करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जिस्म लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों तरफ तकसीम को कबूल कर सकता है। अब इस डब्बे का ये जो ऊपर वाली सतह है, क्या है ऊपर वाली? ये है सतह भाई, सतह। देखो डब्बे की कितनी जानिबें हैं? छह जानिबें, एक जानिब ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे, एक पीछे, तो छह जानिबें हैं। तो इसकी गोया छह सतहें हैं। क्या हैं? छह सतहें हैं। हर जानिब के जो ऊपर का हिस्सा है यह है सतह भाई, सतह। और ये जो सतह होती है ये इसकी लंबाई भी होती है, इसकी चौड़ाई भी होती है, लेकिन इसकी गहराई नहीं होती। सतह एक जानिब का नाम है ना, तो इसकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी, लेकिन गहराई नहीं। जब सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है तो सतह सिर्फ लंबाई में तकसीम को कबूल करती है और सिर्फ चौड़ाई में तकसीम को कबूल करती है, गहराई में तकसीम को कबूल नहीं करती। तो यह है सतह। तो कितनी सतहें हो गई इसकी? छह सतहें। और उसके बाद ये जो सतह की तरफ है, यानी सतह के चार किनारे चारों तरफ, सतह के चार, तो ये हर किनारा जो है इसको खत कहते हैं। ये जो सतह की तरफ है, सतह की जो एक जानिब है, इसको क्या कहते हैं? खत कहते हैं। ये जो खत होता है इसकी सिर्फ लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई है ना इसकी गहराई। तो ये सिर्फ लंबाई में तकसीम को कबूल करेगा, ना चौड़ाई में तकसीम को कबूल करेगा और ना गहराई में। और खत की एक जानिब को, एक किनारे को नुक्ता कहते हैं, और नुक्ता इसकी न चौड़ाई है न गहराई है और ना लंबाई, लिहाजा ये किसी तरफ भी तकसीम को कबूल नहीं करता, न लंबाई में तकसीम को कबूल करता है, न चौड़ाई में तकसीम को कबूल करता है और ना गहराई में। तो जिस्म किसे कहते हैं? जो लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों में तकसीम को कबूल करे। सतह उसकी एक जानिब को कहते हैं और सतह सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में तकसीम को कबूल करती है, गहराई में तकसीम को कबूल नहीं करती। और जो खत होता है वो सतह की तरफ को खत कहते हैं और खत की सिर्फ लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है ना उसकी गहराई, लिहाजा वो सिर्फ लंबाई में तकसीम को कबूल करता है। और नुक्ता जो है उसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई और ना गहराई, लिहाजा वो किसी तरफ भी तकसीम को कबूल नहीं करता। तो नुक्ता बसीत है। क्या है? बसीत है। बसीत बा सीन या और त्वा भाई, बसीत। बसीत उस चीज को कहते हैं जो मुरक्कब ना हो, जिसके अजजा ना हो। तो नुक्ता क्या हुआ? बसीत हुआ, जिसके अजजा नहीं है। यह तकसीम को कबूल कर ही नहीं सकता, तकसीम हो ही नहीं सकता। तकसीम होगा तो हम कहेंगे इसके अजजा हैं, जब तकसीम ही नहीं हो सकता तो इसके अजजा कहां से? तवज्जो है। तो नुक्ता जो क्या है वो बसीत है, वो तकसीम को कबूल नहीं करता किसी भी जानिब में। और मिसाल से और बात समझ लें जरा। फर्ज करो मेरे सामने कागजों का एक दस्ता पड़ा है, मसलन 500 कागज हैं और सारे एक बराबर हैं। इन सारे कागजों को एक दूसरे के ऊपर रखा तो देखो इसकी कुछ मोटाई भी हो गई, हर सफे की कुछ चौड़ाई भी है और कुछ चौड़ाई भी है और कुछ लंबाई भी है। गहराई तो नहीं लेकिन लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो 500 सफों को आपस में या हजार सफों को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा तो यह एक जिस्म बन गया। क्या बन गया? जिस्म बन गया। देखो इसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है और गहराई, खूब मोटा दस्ता बन गया। लंबाई भी है चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तो ये देखो ये उस जिस्म की तरह है, लंबाई भी, ये लंबाई में भी तकसीम को कबूल करता है, गहराई में भी और चौड़ाई में भी। और ये किससे बना? बहुत, हर कागज को यूं समझो सतह है। क्या है? सतह। तो बहुत सारी सतहें मिली तो एक जिस्म बन गया, बहुत से सफे मिले तो क्या बन गया? एक जिस्म बन गया, बहुत सी सतहें। इसी तरह सतह की तरफ को क्या कहते हैं? खत। बहुत से खत मिले तो एक सतह बन गई, एक जानिब को क्या कहते हैं? खत। उस वो उस तरह की बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सतह बन जाएगी, इन्हीं को एक सफा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और नुक्ता खत की तरफ को कहते हैं, बहुत सारे नुक्ते मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? खत बन जाएगा। बहुत सारे, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, दो सतहें भी मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? दो सतहें, सतहें जिसम बन जाएगा, क्योंकि जब दो हो गई अब तकसीम हो सकता है, यानी गहराई में अब तकसीम हो सकता है गहराई में। और इसी तरह दो खत आपस में मिल गए तो क्या बन गई? देखो नुक्ता, नुक्ता किसी तरफ तकसीम को कबूल नहीं कर, लेकिन जब दो नुक्ते मिलेंगे अब तो कुछ लंबाई बन जाएगी। अब ये लंबाई में क्या कर रहा है? तकसीम को कबूल कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? खत कहेंगे, क्योंकि खत जो है वो लंबाई में तकसीम को कबूल करता है। फिर दो खत आपस में मिले तो खत पहले लंबाई में तकसीम को कबूल कर रहा था, अब दो खत हो गए तो अब चौड़ाई में भी तकसीम को कबूल करेगा, तो यह क्या बन गई? सतह। और दो सतहें ऊपर नीचे आ गई तो अब लंबाई में भी तकसीम को कबूल कर रही थी सतह, चौड़ाई में भी, अब दो सतहें मिल गई तो अब गहराई में भी तकसीम को कबूल करेगी, तो ये क्या बन जाएगी? जिस्म बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो ये आपको समझाने के लिए मैंने ये मिसाल जिक्र की कि बहुत सारे कागज हैं, उनका दस्ता आप अपने सामने रखते हैं तो हर कागज एक सतह है, बहुत सी सतहें मिली तो क्या बन गया? जिस्म। और ये जो सतह है इसकी तरफ को क्या कहते हैं? खत। बहुत से खत मिलते हैं तो क्या बन जाती है? बहुत से मतलब दो भी मिल जाए, दो भी मिल जाए तो क्या बन जाएगा? दो खत भी मिल जाए तो सतह बन जाएगी। और इसी तरह नुक्ता जो है वो खत की तरफ को कहते हैं, दो नुक्ते भी मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? खत बन जाएगा, क्योंकि खत किसे कहते हैं? जो लंबाई में तकसीम को कबूल करे। तो जब दो नुक्ते आपस में मिले तो अब ये लंबाई में तकसीम को कबूल करेंगे, क्योंकि ये दो हैं, तकसीम हो सकते हैं। अब याद रखना ये जो आपके सामने मैंने बयान किया, कागज को एक सतह कहा और कागज के किनारे को क्या कहा? खत कहा। लेकिन ये हकीकत में ये सतह नहीं और ये हकीकत में ये खत नहीं भाई। या मसलन आप क्या करते हैं, पेंसिल से एक खत खींच लेते हैं कागज पर, कि ये देखो ये खत है, ये सिर्फ लंबाई में तकसीम को कबूल करेगा। क्या करेगा? आप कागज पर एक खत खींच देते हैं पेन से और आप क्या कहते हैं, ये सिर्फ किस में तकसीम को कबूल कर रहा है? लंबाई में। नहीं भाई, लंबाई नहीं। आजकल ऐसे आलात हैं, आप कलम से एक नुक्ता लगाते हैं, देखो ऐसी खुर्दबीन है जिसमें जरासीम नजर आ जाते हैं, वो उसको हजारों लाखों गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये एक नुक्ता भी आप लगाते हैं, आजकल के आलात के जरिए ही क्या हो सकते हैं, इसके हजारों हिस्से हो सकते हैं, इसमें तकसीम हो सकती है। तो ये जो नुक्ता, ये खत और सता और ये जो जिस्म जिक्र किया गया, याद रखो ये सब अरज जिक्र किए गए। क्या जिक्र किए गए? अर जो जो मैंने आपसे कहा था कि ये सामने एक डब्बा फर्ज कर लें, डब्बा यानी एक जिस्म फर्ज कर लें जिसकी चौड़ाई भी है, गहराई भी है और लंबाई भी है। याद रखें इससे मुराद जिसमें तालीमी है। क्या मुराद है? जिसमें तालीमी मुराद है। मैंने आपको बताया था एक है जौहर और एक है अरज। जौहर वो है जिसका अपना अलग वजूद हो, और अरज जो है वो सिफत होती है, उसका अपना अलग वजूद नहीं होता। जैसे ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, पहाड़ है, पत्थर है, ये मस्जिद है, आपकी जात है, ये सब क्या है? जौहर। और कुछ इनकी सिफात हैं, जैसे सफेद होना, नीला होना, सबज होना, ये रंग क्या है? ये अरज है। तवज्जो है, जौहर का अपना वजूद होता है, वो अपने वजूद में किसी महल का मोहताज नहीं होता, जबकि सिफत उसके लिए कोई महल यानी कोई मौसूफ चाहिए। वो मौसूफ है तो सिफत है, वो मौसूफ नहीं तो सिफत भी नहीं। जैसे जैद की सखावत, जैद है तो जैद की सखावत भी है, जैद नहीं तो उसकी सखावत भी नहीं। तो जैद वो तो जिस्म है, जौहर है, लेकिन ये जो उसकी सखावत है वो अरज है। तवज्जो है। तो जौहर और अरज जान गए। जौहर किसे कहते हैं? जिसका अपना अलग वजूद हो, जो अपने वजूद में किसी महल की मोहताज नहीं। और जो अरज किसे कहते हैं? जिसका अपना अलग वजूद नहीं, वो अपने वजूद में किसी महल का मोहताज यानी किसी मौसूफ का मोहताज है। तो ये जो अभी आपके सामने जिस्म जिक्र किया, जो लंबाई में भी तकसीम को कबूल करता है, गहराई में भी और चौड़ाई में भी, ये जिस्में तालीमी है। वो जिस्म नहीं जो जौहर होता है, वो जिस्म नहीं, वो जिस्म भी लंबाई, गहराई और चौड़ाई को कबूल करता है, लेकिन यहां जो आपने फर्ज किया वो क्या है? ये जिसमें तालीमी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिसमें तालीमी कहते हैं। और याद रखो ये अरस है। ये क्या होता है? अरस। इसलिए क्योंकि ये मुरक्कब है अरस से, और जो चीज आरस से मुरक्कब हो वो खुद भी क्या होती है? आरस होती है। तवज्जो है। जो चीज आरस से मुरक्कब हो वो भी क्या होती है? आरस होती है। तो खत किससे मुरक्कब? नुक्तों से। खत किससे मुरक्कब? नुक्तों से। और सता किससे मुरक्कब? खतों से। और ये जिस्म किससे मुरक्कब? सतहों से। तवज्जो है। तो खत किससे मुरक्कब हुआ? नुक्तों से। और सता किससे मुरक्कब हुई? खतों से। और ये जिस्म किससे मुरक्कब हुआ? सतहों से। और एक जाब्ता याद रखना कि जो चीज अरज से मुरक्कब हो जाए, अरज उसका जुज हो जाए, वो भी क्या होती है? अरज होती है। तवज्जो है। जो चीज अरज से मुरक्कब हो जाए वो क्या होती है? अरज। तो यहां पर भी ये खत किससे मुरक्कब? खत किससे मुरक्कब? नुक्तों से। तवज्जो है। याद रखो ये जो नुक्ता है ये आरज है। क्या चीज है? ये आरज है। तो जो नुक्ते से मुरक्कब होकर खत बना वो भी क्या होगा? आरज होगा। ये खत आरज है। ये खत से मुरक्कब होकर क्या बनी? सता बनी। तो सता भी क्या है? आरज है। फिर सतहों से मुरक्कब होकर क्या बना? जिस्म बना। तो ये भी क्या है? आरज है। तो यहां ये जिसमें तालीमी मुराद है, और जिसमें तालीमी याद रखना अरज है। जिसमें तालीमी अरज है, इसको जिसमें तालीमी कहते हैं, इसलिए क्योंकि तुलबा को तालीम देने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। तुलबा को तालीम देने के लिए, चीजें समझाने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको जिसम, सता, खत और नुक्ते को समझाने के लिए इस जिसमें तालीमी का सहारा लिया कि एक जिसम फर्ज करें जिसकी क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है। तवज्जो है। याद रखना ये जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है ये औसाफ होते हैं, इनका अपना अलग वजूद नहीं। तवज्जो है, ये जो लंबाई चौड़ाई और गहराई होती है ये औसाफ होते हैं, इनका अलग वजूद नहीं। ये किताब है मसलन मेरे सामने, इसकी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ गहराई है, लेकिन ये सिफत है इस किताब की। ये किताब है तो ये लंबाई चौड़ाई और गहराई भी है, ये किताब नहीं तो ये वाली लंबाई चौड़ाई और गहराई भी नहीं। क्या ऐसा है कि आप इस किताब को खत्म कर दें और लंबाई या चौड़ाई या गहराई अलग से रह जाए? नहीं, ये लंबाई और चौड़ाई और गहराई क्या होती हैं? चीजों की सिफत होती हैं। तवज्जो, ये चीजों की सिफत होती हैं। तो लिहाजा वो जिस्म जो मुरक्कब है किस से? इसी अरस से, लंबाई चौड़ाई और गहराई से, वो भी क्या होगा? वो अरस होगा। तो जिसमें तालीमी किसका नाम है? वो अरस का नाम है, वो जौहर नहीं है। और इसको जिसमें तालीमी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुलबा को तालीम देने के लिए, समझाने के लिए चीजें इसका सहारा लिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जिसमें तालीमी कहते हैं। तो ये जो आपने लंबाई चौड़ाई और गहराई का तसव्वुर किया और इससे जो सूरत हासिल हुई उसको कहते हैं जिसमें तालीमी। इसको क्या कहते हैं? जिसमें तालीमी कहते हैं। और ये खारिज में, ये खारिज में, ये जिसमें तालीमी जौहर के साथ कायम होता है, उस जिसम के साथ जो क्या होता है? जौहर होता है। मसलन आप एक लकड़ी का डब्बा बना लेते हैं, अब ये डब्बा लकड़ी का है, ये क्या है? जौहर है। ये क्या है? जौहर है। लेकिन इसकी भी लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई है। तो गोया जिसमें तालीमी इसके साथ कायम है, क्या है? इसके साथ कायम है। तो जिसमें तालीमी किसका नाम है? आरस का नाम है, ये जौहर नहीं। तो ये जिसमें तालीमी अरस है और ये जिसमें खारिजी के साथ कायम होता है, यानी उसकी सिफत बनता है। खारिज में आपने एक लकड़ी का डब्बा बनाया तो ये जिसमें तालीमी क्या है? उसके साथ कायम है, उसकी सिफत है। लंबाई चौड़ाई और गहराई क्या है? अरस है। तो इनसे जो मजमुआ जो हासिल हुआ वो भी क्या होगा? अरस ही होगा। बात चल रही थी नुक्ते के बारे में। याद रखो ये जो नुक्ता है ये नौए बसीत है। ये क्या है? नौए बसीत। बसीत किसको कहते हैं? जिसके अजजा ना हो। जब ये नौए बसीत है मालूम हुआ इसके ऊपर कोई जिंस नहीं। जब नौए बसीत है तो इसका जुज नहीं, जब जुज नहीं तो इसके ऊपर जिंस भी नहीं। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जब ये नौए बसीत है तो इसका कोई जुज नहीं, जब जुज नहीं तो इसके ऊपर जेंस नहीं। याद रखो, याद रखो, जेंस उसी चीज के ऊपर आएगी जो मुरक्कब होगी। जैसे इंसान की हकीकत क्या है? हैवान नातिक। इसके ऊपर क्या है? हैवान जेंस है। तो हैवान जेंस उसी के ऊपर आएगी जो चीज क्या होगी? मुरक्कब होगी। इंसान किस चीज से मुरक्कब है? हैवान और नातिक से। तो जिंस इसका एक जुज है। जिंस क्या है? एक जुज है। और दूसरा जुज क्या है? फसल है, फसल है। तो जिंस उसी माहियत के ऊपर आएगी जो मुरक्कब होगी, जिंस और फसल से। जो जिंस और फसल से मुरक्कब ही नहीं उसके ऊपर जिंस कहां से आएगी? नई बात समझ में आई क्या? कि नुक्ता नौए बसीत है। जब नौए बसीत है इसका कोई जुज नहीं, जब जुज नहीं तो फिर इसके ऊपर कोई जिंस भी नहीं। क्योंकि अगर इसके ऊपर जिंस होती तो ये जिंस और फसल से मुरक्कब होता, क्योंकि जिंस उन्हीं चीजों के ऊपर होती है जिनकी हकीकतें मुख्तलिफ होती हैं। तवज्जो है, जिनकी हकीकतें, जब उनकी हकीकतें मुख्तलिफ हैं और उनके ऊपर क्या मौजूद है? जिंस। तो ये जिंस इनका जुज है लेकिन इनकी हकीकतें तो अलग अलग। जब हकीकतें अलग हैं तो हर एक के लिए फसल भी चाहिए या नहीं चाहिए? फसल भी चाहिए। तो जिस चीज के ऊपर जिंस होगी वो जिंस और फसल से मुरक्कब होगी। और जब नुक्ता नौए बसीत है मालूम हो इसका जुज नहीं, जब जुज नहीं तो इसके ऊपर जिंस भी नहीं है, लिहाजा नुक्ता नौए इजाफी नहीं है। क्योंकि नौए इजाफी किसको कहते थे? जिसके ऊपर जिंस हो, कि उस माहियत को और दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में क्या आए? जिंस आए। जिंस तभी जवाब में आएगी जब उस चीज के ऊपर जिंस मौजूद तो हो, यहां नुक्ते के ऊपर तो जिंस मौजूद ही नहीं है, लिहाजा नुक्ते के साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल करेंगे तो कभी भी जिंस जवाब में नहीं आएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई जिंस है ही नहीं। बात समझ में आ गए? तो नुक्ता क्या है? नौए बसीत है, इसका जुज नहीं। जब इसका जुज नहीं तो इसके ऊपर जिंस भी नहीं, जब इसके ऊपर जिंस नहीं तो ये नौए इजाफी भी नहीं। क्योंकि नौए इजाफी किसे कहते थे कि एक माहियत के साथ दूसरी माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए तो जवाब में जिंस आए, मालूम हो उसके ऊपर कोई जिंस होगी तो वह जवाब में आएगी, अगर जिंस ही नहीं तो जिंस जवाब में भी नहीं आएगी। जैसे जौहर है, जौहर है, जौहर जिंस तो है लेकिन इसके ऊपर कोई और जिंस नहीं, इसके ऊपर, लिहाजा ये नौए इजाफी नहीं है। बात समझ भी आ रही है कि नौए हकीकी किसे कहते हैं? कुल्लियुन मकूलुन अला कसीरीन मुत्तफिकीन बिल हकायकी फी जवाबी मा हुआ। और नौए इजाफी किसे कहते हैं? ऐसी माहियत उसके साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में क्या है? जिंस है, मालूम हो इसके ऊपर हमेशा क्या होनी चाहिए? जिंस होनी चाहिए। और जौहर के ऊपर कोई जिंस है नहीं, लिहाजा जौहर भी मालूम हुआ नौए इजाफी नहीं है। जिसम है नौए इजाफी, जिसमें नामी भी नौए इजाफी है, हैवान भी क्या है नौए इजाफी है, और इंसान भी क्या है नौए इजाफी है, क्योंकि इन सब के ऊपर जिंसें मौजूद हैं। तो बात कर रहे थे कि नौए हकीकी और नौए इजाफी के दरमियान उमूम व खुसूस मिन वजह की निस्बत है, उमूम व खुसूस मिन वजह की निस्बत है, यानी एक चीज नौए हकीकी हो और नौए इजाफी ना हो। जैसे नुक्ता नौए हकीकी है, नौ है लेकिन बसीत है, नौए हकीकी है लेकिन बसीत है लेकिन नौए इजाफी नहीं। और एक चीज नौए इजाफी तो हो लेकिन नौए हकीकी ना हो, जैसे हैवान, हैवान क्या है? नौए इजाफी तो है लेकिन नौए हकीकी तो नहीं, क्योंकि इन हैवान तो मुख्तलिफुल हकायक पर बोला जाता है, और नौए हकीकी किसको कहते हैं? जो मुत्तफिकुल हकायक हो। तो नुक्ता क्या है फिर दोहराएं? नौए हकीकी है, नौए बसीत है, इसका कोई जुज नहीं, जब जुज नहीं तो इसके ऊपर जिंस नहीं, जब जिंस नहीं तो ये नौए इजाफी नहीं। तो नुक्ता नौए हकीकी तो है लेकिन नौए इजाफी नहीं, जबकि हैवान नौए इजाफी तो है लेकिन नौए हकीकी नहीं, क्योंकि नौए हकीकी तो उसे कहते हैं जिनकी हकीकत एक हो, हालांकि हैवान के अफराद की हकीकतें एक नहीं है। और इंसान ये नौए हकीकी भी है और नौए इजाफी भी है, क्योंकि इसके ऊपर जिंस मौजूद है। तो इन दोनों में कौन सी निस्बत हुई? नौए हकीकी और इजाफी में, उमूम व खुसूस में वजह। यह माना है, कहते हैं वह बई नहुमा उमूम व खुसूसुम मिन वजहिन, और इन दोनों के दरमियान यानी नौए हकीकी और नौए इजाफी के दरमियान उमूम व खुसूस मिन वजह की निस्बत है। लितसादुकिही मा अलल इंसानी, बवजह दोनों के सादिक आने के अलल इंसानी, किस पर? इंसान पर। नौए हकीकी भी इंसान पर सादिक आता है और नौए इजाफी भी। व तफारुकिही मा फिल हैवानी वन नुक्तती, और बवजह इन दोनों के जुदा हो जाने के हैवान और नुक्ता में, हैवान नौए इजाफी तो है नौए हकीकी नहीं, और नुक्ता नौए हकीकी तो है लेकिन नौए इजाफी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए बस, बेहदा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।